Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर नजर डालेंगे और प्रमुख समाचारों पर चर्चा भी करेंगे. खबरों पर बातचीत के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, स्टूडियो में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम सिद्धार्थ.
गुड इवनिंग राजेश. नमस्कार सुबोध जी.
पहले हेडलाइंस के साथ राजेश.
Benchmark domestic equity indices end over 1% down ahead of impending tariff deadline. Sensex drops around 850 points. Nifty closes at 24,712. Asian markets end with cuts. European indices trading with losses. And Prime Minister Narendra Modi flags off Made in India battery electric vehicle e-Vitara and inaugurates hybrid battery electrodes plant in Gujarat.
अमेरिकी आयात शुल्क के लागू होने से पहले देश के शेयर बाजारों के सूचकांकों में 1% से ज्यादा की गिरावट. सेंसेक्स लगभग 850 अंक गिरा. निफ्टी 24,712 पर बंद हुआ. एशियाई बाजारों में भी गिरावट. यूरोपीय बाजार भी नुकसान के साथ खुले. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाई. गुजरात में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड संयंत्र का उद्घाटन किया. आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं कि शेयर बाजार का क्या हाल रहा. देश के शेयर बाजारों में आज गिरावट का बोलबाला रहा. निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. एफएमसीजी के अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखा गया. बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 849 अंक गिरकर 80,787 पर बंद हुआ. निफ्टी 256 अंक नीचे 24,712 पर आ गया. बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में 1.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1.7% की गिरावट देखी गई. अमेरिका ने भारत से आयात की जाने वाली चीजों पर कल से 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का नोटिस जारी किया, जिससे बाजार पर असर पड़ा है. कल गणेश चतुर्थी की वजह से शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा, लेकिन कमोडिटी मार्केट में कल शाम 5 से 11:30 बजे तक कारोबार होगा. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए. और राजेश, आप बताना चाहेंगे सेंसेक्स के बारे में.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स टुडे एंडेड 1% डाउन ईच अमिड अ ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ अक्रॉस मोस्ट सेक्टर्स बारिंग एफएमसीजी अहेड ऑफ मिड वीक हॉलिडे. The market sentiment remained under pressure throughout the trading session, reacting to public notice from United States Department of Homeland Security. The notice specified imposition of additional 25% tariffs on imports from India starting from tomorrow. The Sensex lost 849 points to close at 80,787. Similarly, Nifty dipped 256 points to settle at 24,712. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended on a negative note. The mid-cap index declined 1.3% and the small-cap index down nearly 1.7%.
जी, और देखेंगे आज सेंसेक्स में जो शामिल है 30 कंपनियां उनका क्या हाल रहा है. उनमें आज 25 कंपनियों का शेयर नुकसान में बंद हुए. सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें. सन फार्मा 3.4% नीचे आ गया. टाटा स्टील के शेयर लगभग 2.9% और बजाज फाइनेंस के 2.6% नीचे आ गए. सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों पर गौर करें. हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 2.4%, मारुति के 1.8% और आईटीसी के 0.9% से ज्यादा बढ़े.
in sectoral indices at the BSE, barring FMCG, which managed to close 0.7% up. All of the sectors succumbed to selling pressure. Among top laggards, realty dropped over 2.2%, metal slipped 2.1%, and telecommunication dipped over 2%. And the United States has officially issued a public notice imposing additional 25% tariffs on imports from India. The new duties will come into effect tomorrow. The notice has issued by the Department of Homeland Security through U.S. Customs and Border Protection, CBP. It said the tariffs implemented by President Donald Trump's executive order signed August 6. The tariffs will apply to a broad range of Indian products listed in the annex to the notice. Now, Siddharth, now this is a huge thing that's going to happen from tomorrow. How will India face it, or rather has decided to face it? And which are the sectors which are going to be affected by it? And henceforth, moving forward, what is going to be India's game plan?
क्योंकि आज जो राजेश जैसा आपने जो सवाल पूछे हैं इसके साथ ही आज हम जो शेयर बाजार का हाल देख रहे हैं आज तो आशंका में ही है ये हाल और अभी कल कारोबार नहीं है परसों और भी आशंकाओं से घिरा हुआ है
नहीं एज राजेश एज यू राइटली सेड नाउ द इट इज कम द tariff actually has now would be implemented from tonight. Anything which goes to Indian exports to US from tonight, midnight, would be facing a tariff almost 50%. And the sectors obviously very well known, it's gems, jewelry, textiles, leather. So these are the sectors which would be hit largely, pharmaceuticals. And probably if I draw an inference from what Prime Minister Narendra Modi has been saying of late is that he has been emphasizing that yes, the going would be going forward, things would get difficult, but yes, we are ready to face. There will be some initial setback to our exports, but overall I don't see there would be a limited impact on the Indian economy, and as he has rightly prescribed also that we should focus on domestic manufacturing and as well as also try and embrace as much as possible make in India products. As far as going for strategy for Indian exports going forward, obviously looking at newer markets, looking at how we help our own exporters, trying to subsidize the MSME, which are also a large chunk of our exports. So I think that would be the strategy. Plus, I would also like to make an important point, Rajesh. I suspect or I believe that large shipments would have already, people would have kind of speeded up their exports. Because
There has been news to this effect.
Yeah, so if you would see as Apple had also kind of shipped its shipments to US, and though electronic items, mobile phones are out of this tariff, 50% tariff on Indian exports, but yes, so a lot of items, people would have also kind of front loaded their exports to US because everybody knew this is going to happen. It's just that now it is taking effect. And plus, if you look at also what people say is also the margins on Indian exports to US also, so there would be some kind of adjustment in terms of some price hike in US, because obviously people are used to those products, to Indian products in the US market, and obviously also somewhere Indian exporters also working on lesser margins.
Ji, Siddharth, aaj hum share bazaar par nazar dalein agar to aaj bazaar shuruaat bhi giravat ke saath hui thi, 81,024 ke aas pass khula tha aur din mein thoda sa bada bhi wahan se to 81,149 तक गया है और वापस फिर 80,787 पर बंद देख रहे हैं हम. निफ्टी भी 256 अंक नीचे रहे. ओवरऑल सेंटीमेंट आज गिरावट का ही था, लेकिन कुछ सेक्टर्स इससे बचे रहे. क्या वजह देखते हैं?
नहीं सुबोध जी, एक तो जो इमीडिएट आज जो सेल ऑफ था, एक तो मुझे लगता है बहुत ब्रॉड बेस था एक्सेप्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उसको अगर आप छोड़ दें तो जो एक सेंटिमेंट तो सेल ऑफ का ही सेंटिमेंट था, और मुझे लगता है उसका इमीडिएट कारण वही था कि जो टैरिफ का अनाउंसमेंट और आज जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अमेरिका के एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया कि आज रात के बाद जो भी हिंदुस्तान से भारत से एक्सपोर्ट होगा सामान अमेरिका को, उस पर 50% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। तो मुझे लगता है वही एक कारण था। और मुझे एक और बात लगती है इसमें कि कुछ जो प्रॉफिट बुकिंग एक इम्पैक्ट, ये तो बात सबको पता था कि
कल की बढ़त का
और कल का, और इधर हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा मार्केट्स में थोड़ा एक जो हाईज बने थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, तो वो भी एक कारण है कहीं ना कहीं। और एक जो आप देखेंगे चाहे एशियन मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट है, वहां पे भी कहीं ना कहीं एक जो चिंता है यूएस की टैरिफ्स को, अनसर्टेनिटी यूएस की पॉलिसीज को लेके, तो वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारी बाजार पे भी कर रहा है।
सर, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू मार्केट मंत्रा। सिद्धार्थ, लुकिंग फॉरवर्ड, व्हाट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज वुड यू रिकमेंड फॉर इंडिया टू रिमेन रेजिलिएंट इन अ मोर फ्रैगमेंटेड ग्लोबल इकोनॉमी?
सी राजेश, आई थिंक एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, वी हैव आर डोमेस्टिक पॉलिसीज, इफ यू लुक एट सिंस द 2014, सिंस द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, दे अशर्ड इन लॉट ऑफ reforms on the economic side, whether it was make in India, make for the world, ease of doing business, the implementation of goods and services tax. So we have, and decriminalization of laws, making things easy for Indian manufacturers. And obviously, as you write, so we have a consistent economic policy. As far as this issue is concerned, obviously tariffs, I think we have somehow been, I would say, unlucky, because we were on a very sound track as far as the talks with US were going. We were definitely in the beginning put on a higher tariff bracket by Donald Trump, but then again he had put a given us a moratorium of but somehow there was a huge expectation that we'll reach a kind of an agreement on trade agreement with US, but somehow unfortunately this has happened. I think Indian exporters and if I were to give you an example, you look at COVID, how we bounced back from the COVID when the entire world was impacted by the COVID, there was a certain disruption. So I think there would be an immediate disruption, especially for sectors like gems, jewelry, textiles, leather, lot of labor intensive sectors for India. But I think in long term we would this would help us work on lesser margins, help us work on obviously government would also, I'm sure, would intervene, would give certain incentives in terms of loans, cheaper loans to the people working in these sectors, to our exporters. Also I think also there are a lot of further easing of rules, regulations for people in currently into exports. So I think, and obviously the bigger answer would be looking for newer markets, which we continue. And if you look even 5-7 years back, we succeeded in a big way. We found markets into Africa, West Africa. So I think the bigger solution, and also there could be another thing which people are talking about, how do we may route our exports to US from different countries, like giving an example via Mexico, or assembling our products in US. So there could be various permutation and combinations. And I think Indian exporters, if you look at our resilience of our Indian manufacturers, I think there would be some immediate setback, but overall in long term I think we would overcome this.
Jee. जैसा अभी सिद्धार्थ ने बताया कि अभी भारत को नए बाजार भी ढूंढने होंगे, और शायद ये आत्मनिर्भरता की ओर भी हमें ले जाए लॉन्ग टर्म में, अगर हम देखें तो, अगर कम मार्जिन पे हम काम करना सीख लें, उत्पाद बनाना सीख लें और नए बाजार तलाश लें। तो आइए नई अगली खबर पे चलते हैं। रुपया का क्या हाल रहा आज अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में? एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे गिरकर 87.68 रुपये पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतरदिवसीय कारोबार में 98.24 पर कारोबार कर रहा था। और एशियाई बाजारों का क्या हाल रहा? जैसा कि पहले सिद्धार्थ भी बता चुके हैं आपको कि आज एशियाई बाजारों में भी गिरावट रही। हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.2%, जापान का निकेई लगभग 1%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% से अधिक, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.4% नीचे और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुआ। प्रमुख यूरोपीय बाजारों के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट बनी हुई है। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक लगभग 1.5%, लंदन का फुटसी 0.5% और जर्मनी का डैक्स लगभग 0.3% नीचे चल रहा है।
US स्टॉक्स इंडेक्सेस एंडेड इन नेगेटिव टेरिटरी ऑन मंडे। द डिक्लाइन फॉलोज प्रायर सेशंस गेन्स व्हेन US फेड चेयर इंडिकेटेड दैट अ सितंबर इंटरेस्ट रेट कट वाज लाइकली बट अनसर्टेन। The Dow Jones Industrial Average decreased nearly 0.8%, S&P 500 declined over 0.4%, and the tech-heavy Nasdaq Composite Index dipped around 0.2%. Siddharth, these tariffs we've been talking about, almost entire world have been tariffed by U.S.
The so turbulence.
If this is the scenario, then how come U.S. can insulate itself from the inflationary pressure that will come its way? Uncertain inflation is going to be high as we go along.
No, not only inflation. I think, Rajesh, we are seeing in the data we are getting from the labor market from U.S., the last which came in July. And the startling fact was that the May and June were labor data. They were revised downwards. So that was again something which is definitely worrying for not only inflation, plus U.S. economy also slowing down. And that is why we are saying, you just read out the statement of Jerome Powell saying that he might look at a rate cut.
Yeah.
Yeah. So what I'm trying to say is obviously uncertainty all around, and as Donald Trump yesterday also threatened China with a 200% tariff if rare earth items are not supplied to United States by China. So all that is kind of still creating uncertainty in not only for us but for the entire world, be it Japan, be it South Korea, because the president just met the South Korean president also. And so he's trying to bulldoze things, and things are still evolving. So what do I say? I still see things could
you
be answered.
You're mentioning about China being threatened with 200 tariff.
Yeah, so because Trump, each morning he gets up, we get to hear something or the other, some surprise element is there. And the last one which we heard from is obviously he's threatening China if they don't supply rare earth items, especially magnets, which are very critical for the U.S. Manufacturing. So I think he would impose a 200% tariff on China. And obviously there would be a retaliatory effect retaliation from China also. They're not going to take things lying down.
जी सिद्धार्थ, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो इन हालात में अगर हम देखें, अगर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अगर बनता है, जिस तरह से भारत भी कोशिश कर रहा है, रशिया के साथ मिल रहा है, चाइना के साथ बात चल रही है, जापान के साथ भी चर्चा चल रही है और भी देशों के साथ चल रही है, इसमें क्या जो कोशिश की जा रही है वो उस पूरे नए, अगर हम एक नया परिदृश्य देखते हैं तो उसमें भारत की क्या स्थिति होगी?
नहीं, देखिए जहाँ तक हम हैं, हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, बहुत जल्द हम 5 ट्रिलियन का मार्क पार कर जाएंगे। तो और भारत, क्योंकि आप चाइना से देखेंगे तो हम चाइना के लिए बहुत बड़ी मार्केट हैं, बहुत बड़ा, जो चाइना का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंडिया को होता है। वहीं रशिया को देख लें तो हम उनसे तेल आयात कर रहे हैं। आज शायद हिंदुस्तान या इंडिया को आप कहें तो वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ रशियन ऑयल। और ये कहना कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ ये ज़रूर है, क्योंकि हमारे रिश्तों में कुछ खटास आई थी चाइना के साथ, खासकर जब बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। तो मुझे लगता है ये जो US के साथ अब टैरिफ का जो इशू आया या जो हैवी टैरिफ US इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे इम्पोज कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो दूरियां हमारे और चीन के बीच में थी वो नज़दीकियाँ बन रही हैं। और साथ साथ चीन और रशिया चूंकि वो करीबी दोस्त रहे हैं तो उसको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक वॉल के
बन तो होंगे। जी, आइए वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर मार्केट मंत्र और हम अब अगली खबर पर नजर डालते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के राष्ट्रीय लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण दिन है. वे गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर भारत और जापान के बीच की मित्रता को नया आयाम देगा. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के हंसलपुर से मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाई. ये वाहन यूरोप और जापान जैसे प्रमुख बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात किए जाएंगे. स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने हंसलपुर आधारित TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी तंत्र के नए चरण का शुभारंभ किया.
ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरी का भी निर्माण करे. इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां TDSG बैटरी प्लांट की नींव रखी थी. TDSG की ही नई पहल पर इस फैक्ट्री में 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली बार सेल मैन्युफैक्चर करेगी. भारत में बैटरी सेल के इलेक्ट्रोड भी लोकल लेवल पर तैयार होंगे. ये लोकलाइजेशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देगा.
ईवी के क्षेत्र में सिद्धार्थ ये काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है अभी भारत की.
सिद्धार्थ, दिस इज अ जायंट लीप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन क्लीन एनर्जी.
Yeah, absolutely, Rajesh. Because electric vehicles are getting very fast, they are gaining popularity. So I think it's a big step, especially because we are going to manufacture batteries in India now for the first time. So I think it's a big step, and obviously, as you said, for Make in India.
जी, अगली खबर पे चले. बिहार में राज्य सरकार ने नए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दे दी है. इसके अंतर्गत नए उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों और निवेशकों को भूमि संबंधी रियायत, ऋण में छूट सहित अन्य सहायता प्रदान की जाएगी. पेश है एक रिपोर्ट.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई. इसके तहत उद्यमियों को 40 करोड़ रुपए तक का ब्याज सब्सिडी और उद्योग स्थापित करने के लिए 30% तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक की भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी. 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी. इस पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन देना होगा. इस पैकेज से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलने की संभावना है. मार्केट मंत्र के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया.
Government has imposed stock limits on wheat to manage the overall food security and to prevent hoarding and unscrupulous speculation. The stock limits will be applicable to traders and wholesalers, retailers, big chain retailers and processors in all states and union territories. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the stock limit for the traders and wholesalers was 3,000 metric tons, which has been reduced to 2,000 metric tons in the revised stock limit. Similarly, the stock limit for the retailers will be 8 metric tons. A quick comment.
Rajesh, if you look at the price stability record of this government, whether through the monetary policy or by maintaining regular supplies of essential items, I think they have done they've had an excellent record, and this is also a step because you kind of take a forward-looking view on prices in the future, and so that is why you impose stock limits so that there is no speculation which leads to price rise.
चलिए देखें कि GST के बारे में क्या खबर आ रही है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लोगों से अनुरोध किया है कि जीएसटी की दरों के बारे में कोई अनुमान न लगाएं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि जीएसटी की दरों के बारे में फैसले जीएसटी परिषद द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। बोर्ड ने कहा है कि पहले से अनुमान लगाए जाने से अफवाहें फैलती हैं और इससे बाजारों में अस्थिरता आ सकती है। बोर्ड ने सलाह दी है कि जीएसटी परिषद की 3 और 4 सितंबर की बैठक के बाद होने वाली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल embark on an official visit to Japan on Thursday. Addressing a press conference in New Delhi today, Foreign Secretary Vikram Misri gave more details regarding PM's visit.
Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28 August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan.
On the other hand, Ministry of External Affairs Secretary West Tanmay Lal briefed media about Prime Minister Modi's upcoming visit to China. He informed that Prime Minister will visit Tianjin, China for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council on the 31st of this month and 1st of next month at the invitation of President Xi Jinping of China. Crude oil prices lost more than 1% today as traders monitor developments surrounding the war in Ukraine and potential disruption to Russian fuel supplies. Brent crude was trading almost 1.6% down at $67.71 per barrel, and WTI crude was also trading over 1.7% down at $63.37 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% up at 1,01,200 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.25% down at 1,16,240 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein samachar tayar kiye jane tak अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.3% बढ़कर 1,09,43 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.2% घटकर 1,15,736 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। सिद्धार्थ, मार्केट मंत्र में आने और समाचारों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस।
थैंक यू।
एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंड ओवर 1% डाउन अहेड ऑफ इम्पेंडिंग टैरिफ डेडलाइन। सेंसेक्स ड्रॉप्स अराउंड 50 points. Nifty closes at 24,712. Asian markets end with cuts, European indices trading with losses, and Prime Minister Narendra Modi flags off Made in India battery electric vehicle, EVTARA, and inaugurates hybrid battery electrodes plant in Gujarat. That's all we have in this additional market mantra. Till tomorrow, goodbye.